ولا تطیع کل حلاف مہین، نہ بات مانیے کسی جھوٹی قسمیں کھانے والے ذلیل شخص کی۔ حلاف کہتے ہیں بہت قسمیں کھانے والا، حلف قسم کو کہتے ہیں، اور مہین رسوا کن، اردو میں بھی یہ لفظ آتا ہے، گھٹیا ذلیل، ہمارے ہاں جس کو کمینے کا لفظ کہتے ہیں، بہت قسمیں کھانے والا، بات بات پہ قسم کھاتا ہے، کیونکہ اس کو خود بھی پتہ ہے میں جھوٹا ہوں۔ 1 2 3 کریں، ابھی آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص کے اندر کتنی برائیاں جمع ہو رہی ہیں۔ پہلی کیا تھی؟ حلاف، مہین۔ تیسری ہمازم مشا ام بی نمیم، جو بہت نقطہ چین، نقطے چینیاں کرنے والا، تنقید کرنے والا، مشا ام بی نمیم، چغلیاں کھانے والا۔ مشا وہی ہے جو لفظ پیچھے ہم پڑھ چکے، یمشی مشو، یا مشا بہت زیادہ شدت کی طرف اشارہ ہے، بہت چلتا ہے، بی نمیم، چغلیوں کے ساتھ۔ عربی زبان میں جو چغل خور ہوتا ہے نا، اس کو لکڑیاں بردار کہتے ہیں، جیسے لکڑیاں اٹھا کے ادھر سے ادھر کوئی جاتا ہے تاکہ آگ لگائے، چغلیاں کھانے کھلانے والا بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ادھر سے ایک بات کی چغلی پکڑی، لکڑی ہے سمجھے، دوسری میں گیا، تیسری میں گیا، اور وہاں جا کے وہ ساری چغلیاں جمع کر کے پھر لڑائیوں کی آگ لگاتا ہے، اشارہ چغل خور۔ اگلی برائی منع للخیر، سخت منع کرنے والا بھلائی سے، ایک تو تھا مانے، یہ ہے منع شدت سے، للخیر خیر سے مراد نیکی، نیکی نہ کرتا ہے نہ کرنے دیتا ہے، بیٹھ بیٹھ کے باتیں ہی کرتا ہے کہ اب سارا کام ہم نہیں کرنا ہے، سارے پیسے ہم نہیں جمع کرنے ہیں، ساری مصیبت ہمارے لیے، خود رکنے والے دوسروں کو بھی روکتے ہیں، ہمت ٹوٹے ہوئے لوگ دوسروں کے بھی توڑتے ہیں، ایک آنکھ نہیں بھاتے ان کو وہ لوگ جو بڑھ بڑھ کے نیکیاں کرتے ہیں تاکہ پھر ان کی وجہ سے سب کا ہی معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ خیر سے منع، لفظ دیکھ لیں تو عربی میں خیر کا لفظ دونوں معنوں میں آتا ہے، ایک تو یہ خیر اور بھلائی، اور مال کے لیے بھی، ان الانسان لحب الخیر لشدید بھی لفظ آتا ہے سورۃ العادیات میں، تو خیر سے روکنا بھی اور مال سے روکنا بھی، سخت بخیل اور کنجوس شخص کی طرف اشارہ ہے، کسی کو پھوٹی کوڑی تک دینے کا روادار نہیں، نیکی اور بھلائی کو پھیلانا چاہتا ہے تو وہ بھی نہیں اس کو کرنے دیتا، یعنی انتہائی تنگ نظر شخص ہے۔ اگلی برائی معتد، ادب سے اعتدا، ہم پیچھے پڑتے ہیں، حد سے بڑا ہوا ہر معاملے میں، ایکسٹریمسٹ، ہر دنیا کی چیز میں آگے بڑھ کے کام کرتا ہے، کناروں پہ رہتے ہی نہیں ہے۔ اور اگلی برائی اسیم، اسم سے، بہت گناہ گار، حد سے زیادہ گناہ کرنے والا۔ پھر اگلی برائی اتلم، اتل، اکھڑ مزاج، عین تا لام اس کا روٹ ہے، اتل، جو بہت ہی بد اخلاق ہو، کبھی لوگوں کے ساتھ اچھی بات نہ کرے۔ بعد ازالک الزنیم، اور سب سے بڑھ کے بد اصل ہے، زنیم عرب لوگ ولد الزنا کو کہتے تھے، ایسا بچہ جو زنا سے پیدا ہو، جو ایک خاندان کا فرد نہ ہو بلکہ ان میں شامل ہو گیا ہو، اسی طرح وہ شخص جو شر کی وجہ سے معروف اور مشہور ہو گیا ہو، جس کا نسب کسی باپ سے ثابت نہ ہو، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ بے نسب، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا حال کیا ہے، انکان نظام عالم و بنین، یہ غرور اور سرکشی اس میں اسی لیے آئی کہ یہ مالدار اور صاحب اولاد ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ ساری صفات ولید بن مغیرہ میں تھی، اوس باللہ۔ ان آیتوں نے پول کھولا کہ یہ دور جاہلیت میں زنا کی پیداوار تھا، حالانکہ اپنے دور میں اتنا بڑا سردار اور لیڈر تھا۔ اللہ نے نام نہیں لیا، ہم بھی نہیں لیتے، کچھ نے اسود بن عبد یعوس کا نام لیا، کسی نے اخنس بن شریک کا لیا، لیکن اللہ نے کہا کہ چھوڑ دو، بس یہ دیکھ لو کہ حق کے راستے کے دشمنوں میں یہ خامیاں ضرور ہوں گی۔ اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب کبھی اس پہ ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اس کو سنایا جاتا ہے، پڑھو دیکھو، کہتا ہے یہ پرانے لوگوں کی کہانی ہے، اولڈ ڈیٹڈ لوگ ہیں، 1400 سال پرانی کتاب پڑھوں مجھے کیا ملے گا، میں کیوں نہ کمپیوٹر کا کورس کر لوں، کیوں نہ میں کوئی دنیا کا کوئی اور ڈگری لے لوں، کچھ اور پیسے کماؤں۔ کہا اس کا حال کیا ہے، تکبر کا مارا ہوا، ہم اس کے تکبر کو توڑیں گے، سنسیمہ علی الخرطوم، ہم بہت جلد اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔ سین کو الگ کر دیں، نون کو بھی الگ کر دیں، पीछे देखिए सुम रह गया। दाग लगाना समझते क्या होता? अरब लोग पहले दौर में तो इस तरह से करते थे कि किसी चीज़ को जैसे जलाया जाता है ना, तो इलाज का तरीका भी होता है कि आग लगाते हैं, और खुरतूम कहते हैं सूंड को खाती की, असल में इशारा इसकी मोटी नाक की तरफ। इज्जत का मसला समझता था ये अपना। आज भी बहुत सारे लोग दीन पे अमल ना करने की वजह अपनी इज्जत लेते हैं। अल्लाह कहते हैं ये मोटी नाक, ऊंची नाप, नाक लंबी नाक जो इसका मसला बन चुका है ना, हम इस पर आग से दाग लगाएंगे, लकड़ियों को जला के उसके सिरे पे जो आग होगी वो इसकी नाक पे लगाएंगे। हर बंदा देखने वाला देख लेगा कि ये है इज्जत वाला। आज कितने लोग हैं जो गुनाह करते हैं, अल्लाह की सरासर नाफरमानियाँ करते हैं। क्यों? इसलिए करते हैं कि जी मेरी इज्जत का मसला। तो ये लंबी इज्जतों हैं और मोटी इज्जतें सारी क़यामत के दिन जहन्नुम की लकड़ियों से दागदार कर दी जाएंगी। सनसी मुहलल खुरतूम, अल्लाह ताला कहते हैं ये मक्का वालों का हाल क्या है। अब यहाँ से आगे एक वाक़या इकट्ठा हम पढ़ेंगे। ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह के नबी एक नेमत है। जब मक्का के सहराओं में अल्लाह ने एक रहमत की बारिश बरसाई क़ुरान के नूर के साथ, इन्होंने उसकी कदर ना की, न शुक्री की, आपकी जान के दुश्मन हो गए। अल्लाह कहते हैं इन्ना बलौनाहुम, बेशक हम इनको आजमा रहे हैं। कौन किसको? अल्लाह ताला मक्का वालों को। कैसे? कमा बलौना अस्हाबल जन्ना, जैसे हमने आजमाया था जन्नत वालों को, बाग वालों को। एक किस्सा है जिसमें बाग वालों का तस्करा, लेकिन मैं लफ्ज़ बलाओ को देख रही हूँ। बलाऊ ये वही लफ्ज़ है ना, लिया ब्लुआ कुम बला। लेकिन जब मैंने इस लफ्ज़ को दो दफ़ा बोला ना, बलौना होम बलौना, तो मेरे जहन में बलोनी आ गई। जानते हैं क्या होती है? वो जो दूध को बलोते हैं ना, लस्सी बनाते हैं, उसमें क्या होता है, रगड़ते हैं ना, आजमाइशें भी बंदे को बलो देती हैं। अल्लाह ताला इस किस्म के हालात पैदा कर देते हैं बाज़ दफ़ा, और बाज़ दफ़ा दीन के मामलात में और ज़्यादा आजमाइशें क्यों आती हैं दीन सीखने वालों को, ख़ास तौर पर कि अल्लाह उनको बलो रहे होते हैं, कि देखना चाहते हैं कि इनके अंदर हाल क्या था। पूरा किस्सा सुन लें, किसका था इसको बात करेंगे। असल यहाँ तमसील है ये कि जो लोग नेमतों की कदर नहीं करते उनके साथ क्या होता। फरमाया इज़ अक़समू लयस्रिमुन्नहा मुस्बहीन, जब उन्होंने कसम उठाई कि वो ज़रूर तोड़ लेंगे इसका फल सुबह सवेरे। ये जो लयस्रिमुन्नहा है ना, तो स्वरिमा से स्वाद रा मीम, फल तोड़ते हैं ना, फसल कटती है उसको तोड़ लेते हैं, उसी की तरफ इशारा। कोई बाग था कि नहीं, बहरहाल बाग कहते हैं यमन में कोई बाग था, कोई कहते हैं सना में था, और वहाँ बहुत सब्ज़ा होता था, और वहाँ एक अल्लाह का नेक बंदा था। उसकी आदत क्या थी कि जब भी फसल कटती थी या बाग का फल आता था तो उसमें से एक ख़ास हिस्सा अल्लाह के रास्ते में सदका कर देता था। बेचारे का वक्त आया चला गया, जब वो मरा तो उसके बेटे सामने आ गए। बेटे बाप को बहुत बेवकूफ़ समझते थे कि सारा पैसा ही इसने गरीबों को खिलाना है और अल्लाह के रास्ते में लगाना है। इन्होंने बैठ के बातें सोची कि अब जब फल तोड़ने जाएंगे, गरीबों को बेचारों को आदत होती है, आस लगी होती है, वो आके पहले से बैठ जाते थे, इनको शर्म से देना पड़ता था। इन्होंने एक चाल चली कि हम ऐसा करते हैं सुबह का इंतज़ार नहीं करेंगे, सहरी के वक्त करीब ही होगा सुबह का वक्त, आधी रात को जा के फसल काट लेंगे, ना कोई फ़कीर होगा ना हम उनको देंगे। ये उनकी प्लॉटिंग चल रही थी। इन्हों का ठीक है। फिर उसके बाद इनमें एक ज़रा समझदार था, उसकी बात बीच में आएगी। जब ये अपने ख़ास वक्त पे वहाँ गए तो ना वहाँ बाग ना बाग का कोई बच्चा। इनको हैरत हुई कि लगता है हम रास्ता भूल गए। जब इर्द गिर्द देखा सारा कुछ वही है, बाग ही नहीं है, तो फिर पता चला कि ये क्या हुआ। अल्लाह ताला कहते फताफ अलैहा ताइफ़ मिन रब्बिका वहुम नाइमून, रात को एक फिरने वाला आया, लयस्रिमुन्नहा मुस्बहीन, कहने लगे हम सुबह सवेरे जाके काट लेंगे ताकि हम किसी दूसरे को कुछ ना दें। वला यस्तस्नून, और उन्होंने इंशाल्लाह भी ना कहा, कोई इस्तस्ना ना किया। ये देखिए क्या लफ्ज़ है, बहुत मुश्किल देखने में लगता है लेकिन इसके अंदर लफ्ज़ मौजूद है। इस्तस्ना क्या होता है? एग्जेम्प्ट करना। हम जब कहते हैं ना इंशाअल्लाह, मतलब मैं कहती हूँ आपको कि मैं आऊँगी, ये तो मैंने 100% कह दिया कि मैं आऊँगी, लेकिन साथ ही मैंने कहा इंशाअल्लाह, तो मैंने इस्तस्ना कर दिया ना, अगर अल्लाह ने चाहा। तो इन्होंने क्या कहा? हम करेंगे लेकिन इंशाअल्लाह ना कहा। तो यस तस नून इस तस ना ना करना। बास कहते हैं इन्होंने इंशाल्लाह ना का, और बास कहते हैं कि फल का वो हिस्सा जो फ़कीरों को देते थे वो ना देने की नियत की। अल्लाह को क्या परवाह इनकी। फताफ अलैहा ताइफ मिन रब्बिका व हुम नाइमून, बस चक्कर लगा गया इस बाग में एक चक्कर लगाने वाला आपके रब की तरफ से जबकि वो सो रहे थे। इशारा है आफत की तरफ, बगोला आग थी जिसमें रात को कोई ऐसी आफत, कोई वबा, कोई बलाई कि सोते सोते में पूरी खेती जो थी वो ख़त्म हो गई। हुआ क्या, फस बहत कसरीम, लहलहाता व बाग कटे हुए खेत की मानित हो गया। सरीम को सुरमे से याद कर लें, सुरम कहते हैं फल को काटना। तो सरीम बमानी मसरूम या मकतू, एक तो तन जो फल खुद काट के उतार के संभाले, तो जब कोई आफत आके सारा फल काट चले ले जाए तो उसको मसरूम कहते हैं। फल तो उसमें भी कटता है लेकिन ज़ाया हो जाता है वो फल, उसके अंदर कोई भी चीज़ काम की नहीं होती और अंधेरे का भी मानी आता है। सरीम रात को कहते हैं, मतलब यह है कि रात तारीक स्याह होती है, इस तरह खेती भी बिल्कुल स्याह हो गई। अब ये बेटे वहाँ पहुँचे। फतना दो मुसबहीन, फिर उन्होंने एक दूसरे को निदा दी सुबह सवेरे। क्या कहा, अनिख दू अला हर्सिकुम इन कुंतुम सारमीन, कि सुबह सवेरे चलो अपने खेत की तरफ अगर तुम फल तोड़ने वाले हो। तना दो एक दूसरे को आवाज़ देना जगाना, कहा चलो चलो जल्दी करो फसल जाके काटते हैं। फन तलकू, फिर चल पड़े। वहुम यतखाफतून, इस हाल में कि वो चुपके चुपके बातें कर रहे थे, खुफिया बातें कर रहे थे। क्यों खुफिया बोल रहे थे, कि फ़कीरों मिसकीनों को ख़बर ना हो जाए। फिर क्या हुआ, क्या थी कसम की बात, अल्लाह यदखुलन्नहल यौम अलैकुम मिसकीन, कि खबरदार इस बाग में हरगिस दाखिल ना हुआ आज तुम पर कोई मिसकीन। ये बात थी, मिसकीनों को ना पता चले ये बातें क्यों कर रहे थे। वगदउ अला हर्दिन क़ादिरीन, और सुबह सवेरे चले ये समझते हुए कि वो इस इरादे पर क़ादिर हैं, यानी हमने सोच लिया कि अब कोई फ़कीर इसमें नहीं आएगा तो क्या बाकी इनका ये इरादा पूरा होने वाला है। गदउ तो वही है जो गदूब और लगत के लफ्ज़ में हम देखते ही हैं। क़ादिरीन क़ादिर से, हर्द कहते हैं मना करने को, गैज़ो गज़ब खाने के मानों में भी आता है। मतलब ये है कि वो ये सोच रहे थे कि हमने जो कसद और इरादा किया था कि कोई फ़कीर और मिसकीन इसमें दाखिल नहीं होगा, तो वो समझ रहे थे कि ऐसे ही होगा जो हम सोच रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, फलम मारूहा, फिर जब उन्होंने देखा उसको, हा क्या है, बाग, कालू बोले, इन्ना लतालू, यकीनन हम रास्ता भूल गए क्योंकि वहाँ तो फसल थी नहीं। फिर एक बोला, नहीं नहीं, बल नहनु महरूमून, नहीं नहीं हमारी तो किस्मत फूट गई, यानी महरूम कर दिए गए, महरूम की जमा महरूम की जमा महरूमून। क़ाल औसतुहुम, उनमें से जो दरमियाना था वो बोल उठा। अच्छा, औसत का लफ्ज़ वसत से है ना, इसको बच्चों के अंदर लें तो मुराद है कि दरमियान वाला बच्चा, ना नीचे का ना ऊपर वाला, बल्कि बिल्कुल मिडल वाला, दरमियान वाला, ये काम मानी है। लेकिन बाज़ कहते हैं कि औसत से मुराद ज़ीरक, सबसे अकल वाला, यानी जो एक्सट्रीम में नहीं था, ना बुखल में था ना कुछ था, चल तो पड़ा था इनके साथ। इससे पता चलता है बाद लोग सिर्फ चल पड़ते हैं नाम सुन के, पता उनको कुछ नहीं होता। ये चल पड़ा था लेकिन ये समझदार था। इसने बोल कहा, अलम अकुल्लकुम, क्या मैंने तुमको ना कहा था, लौला तो सब होन, तुम उसकी तस्बीह क्यों नहीं करते, यानी ये क्या तुमने काम शुरू कर दिया कि नमाज के लिए तो पता नहीं उठे हो नहीं उठे और फसल काटने चल पड़े और अल्लाह की तस्बीह भूल गए, यानी अल्लाह जो सबको खिलाता है तुमने क्यों दूसरों को रोकने की नियत कर ली। इस बात को अब समझ आ गई उनको। क़ालू सुबहान रब्बीना, फौरन कर ली तस्बीह, कहने लगे पाक है हमारा रब, और इकरार भी किया, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, बेशक हम ही ज़ालिम थे। अब क्या करें, फ़कबल बादुहुम अला बादी यतलावमून, फिर एक दूसरे की तरफ मुंह करके एक दूसरे को मलामत करने लगे। ऐसे ही होता है जब कश्ती डूबती है ना, हर बंदा दूसरे पे ख़राबी का इल्ज़ाम डालता है। काम ठीक होते रहे लोग जुड़े रहते हैं, काम ख़राब होते हैं, एक तो ख़राबी होती है, आफत आई को एडवर्स कंडीशन है, सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि आपस में फूट पड़ने लगती है। जो साथ मिल के चल रहे होते हैं वही एक दूसरे को बुरा कहने लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर अपने राय डालने लगते हैं, तो नाकामियों में जो जुड़े रहते हैं ना, इंशाल्लाह फिर वो कामयाबियों में तो और भी जुड़ते हैं। और नाकामी आती भी इसलिए कि ईंटों को हिला जुला के सीधा कर दिया जाए कि अब इसमें जुड़ जाओ, ताकि फिर बाद में तुम्हें कोई मुश्किल पेश ना आए। अब बैठ के बातें करने लगे। ये तलाब अमून मलामत लफ से ही है, लौम इसका रूट है, लाम वामीन, एक दूसरे को मलामत कर रहे थे। कालू या वही लना इन्ना कुन्ना तागीन, कहने लगे तुफ है हम पर, अफसोस हम पर, हम थे ही सरकश, तौगी की जमा। लेकिन देखिए कि दिल खुल गया, इसलिए कहने लगे असा रब्बुना युब्दिलना खैरम मिन्हा, उम्मीद है कि हमारा रब हमें इसका बेहतर बदला देगा। किसका? ये जो बाग जल गया। इन्ना इला रब्बिना रागिबून, बेशक हम अपने रब की तरफ रगबत रखने वाले हैं, रजू करने वाले हैं। सिद के दिल से तौबा की तरफ इशारा है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कज़ालिकल अज़ाब, देख लिया ऐसा होता है अज़ाब, और ये तो सिर्फ दुनिया का अज़ाब था। वला अज़ाबुल आखिरती अकबर, और बेशक आखरत का अज़ाब तो बड़ा है। लौ कानु यालमून, काश वो जानते होते, काश उनको इसकी समझ तो होती। यहाँ पे वाक्या पूरा हुआ। इस वाक्य के यहाँ आने की एक वजह हमने देखी, मक्का के सरदारों का अल्लाह के नबी के सामने ढींगे मारना, आके मुसलमानों का जीना हराम करते थे, कहते थे देखो हम इतने अच्छे हैं तभी तो अल्लाह ने हमें इतना दिया हुआ, और तुम इतने खस्ता हाल हो, इसकी वजह यह कि अल्लाह तुमसे नाराज़ हो। अल्लाह ने यहाँ ये वाक्या सुना के बता दिया कि दुनिया की नेमतें सिर्फ एक इम्तिहान है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला बताते हैं कि जो लोग खुद को बहुत होशियार समझते हैं ना, बाज़ दफ़ा खुद ही बेवकूफ़ हो जाते हैं। इसी बात को बुनियाद बनाते हुए अब लोहा गर्म देख कर बात की गई। तबलीग का ये खूबसूरत नुक्ता है, जब कोई सुनने को तैयार हो फिर सुनाओ। फरमाया इन्नलिल मुत्तकीन इंदा रब्बिहिम जन्नातिन नईम, बेशक परहेजगारों के लिए अपने रब के पास नेमतों भरी जन्नतें हैं। जो दुनिया में अपने हक में से अल्लाह का हक देगा, अल्लाह उसको जन्नत दे देगा। पीछे हमने पड़ाफा में यमशी मुकिबन अला वजहिही, और उसके बदले में एक जो सीधे रास्ते पे चल रहा है। असल पैगाम ये है, उम्मत मुस्लिमा को बताया जा रहा है कि देखो ये जो ऊंधे पड़े हैं ना, इनको उल्टा नहीं करना, इनको सीधा करना है। तुम्हें दुनिया में अल्लाह ने इसीलिए भेजा कि लोग उस जहन्नुम का ईंधन बनने से बच जाएं और नेमतों वाली जन्नत में आ जाएं। जितना एक इंसान दूसरों को जहन्नुम से बचाने की कोशिश करता है, अल्लाह ताला उतने उसके अपने जहन्नुम से बचने के रास्ते आसान कर देता है। फिर एक अक़ल को टच करने वाली बात, अफ़नजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, क्या हम फर्मा बरदारों का हाल मुजरिमों का सा कर देंगे? सवाल है, एक फर्मा बरदार हो और एक नाफरमान हो, क्या आप दोनों बच्चों को एक जैसा ट्रीट करेंगी? एक रूल तोड़े और एक रूल माने, क्या दोनों को जेल में डाल दिया जाएगा? तो मालकुम कैफ़ तहकुमून, फिर तुम्हें क्या हो गया, तुम कैसे फैसले करते हो? किसके बारे में? अल्लाह के बारे में ये सोचे बैठे हो? कोई करे और कोई ना करे दोनों बराबर, कोई डरे और कोई ना डर रहे एक बराबर, ये नहीं हो सकता। एक कुर्बानियाँ दे और एक जड़ें काटे एक बराबर, ये नहीं हो सकता। अच्छा तुम कहते हो तो बताओ, अमलकुम किताबुन फीही तदरुसुन, क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें तुमने ये बात पढ़ ली है? कौन सी बात? कि हम मुस्लिमों को मुजरिमों के बराबर कर देंगे, कोई रेफरेंस नहीं मिला? तो इन्ना लकुम फीही लमा तखय्यरुन, कोई ऐसी गवाही है कि तुम्हें बता दिया जाए कि उसमें तुम्हारे लिए हर वो चीज़ होगी जिसको तुम इख्तियार करोगे? यानी ये जो लोग जुमले बोलते हैं ना, देखना मिल जानी है जन्नत, अल्लाह ने दे देनी है, गलत काम करते कराते पकड़ के, और ऐसे थोड़ी है वैसे थोड़ी, अल्लाह कह रहे हैं कोई किताब का रेफरेंस दिखा दो कि तुम जो चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा। चलो रेफरेंस नहीं दिखाते, अम लकुम ईमानुन अलैना, कोई कसम खाई भी हमने तुमसे? बालिगतुन इला यौमिल क़ियामा, के जो बाकी रहने वाली है क़ियामत तक, क्या इन लकुम लमा तहकुमून, कि तुम्हारे लिए वही कुछ होगा जिसका तुम हुक्म दोगे। एक ही मफहूम चल रहा है कि अगर तुम्हें ये कोई गवाही मिली हुई है कि तुम जो करो जन्नत तुम्हें मिल जानी है, तो ज़रा ला के दिखा दो, कोई रेफरेंस बता दो उसका, कोई ऐसी चीज़ है तो ला के दिखा दो। और सिर्फ इनसे नहीं पूछो, सलहुम, सवाल करो, अय्युहुम बिज़ालिका ज़ईम, इनसे पूछे हैं नबी कि इन बेसरोपा बातों का ज़ामिन कौन है, कौन इसकी ज़मानत देता है कि मैं सीने पे हाथ मार के कहता हूँ कि जाओ तो जो मर्ज़ी करो जन्नत मिल जाएगी। आज लोग हैं ऐसे बातें करने वाले, वो तो कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों को कहते हैं ये एक्स्ट्रा ही मुश्किलों में पड़ गए, कोई इतना तो मुश्किल दीन नहीं था, ये आजकल मुश्किल ज़्यादा हो गया, ये क्या सारे घरों के नक्शे ही बदलते जा रहे हैं, और ये मसला वो मसला। यहाँ ज़ईम का लफ्ज़ है ना, ये कफ़ील के मानों में अरब इस्तेमाल करते थे, ज़ामिन जो किसी कौम की तरफ से बोले, जैसे वकील होता है। अल्लाह ताला कहते हैं कोई तुम नहीं बोल सकते, किसी एक को बुलवा लो मेरे सामने। अम लहुम शुरकाओ, अच्छा कोई इनके गवाह हैं, फल या तू भी शुरकाइहिम, अगर हैं तो पेश करें अपने गवाहों को, इन कानू सादिकीन, अगर ये सच्चे हैं कि अल्लाह ने कोई अजाब नहीं देना। हकीकत इससे ज़्यादा तलख है। अब अगली आयतों को सुनते वक्त ज़रा आप जहन में किसी भी हैंडीकैप शख्स का तसव्वुर लाइए। फरमाया क़यामत उससे बहुत बड़ी हकीकत है जो लोग सोचे बैठे हैं। यौम युक्शफ़ु अन साक़िम व युदऊन इला सुजूदि फला यस्ततीऊन, जिस दिन पर्दा उठाया जाएगा पिंडली से और इनको सजदों की दावत दी जाएगी, लेकिन वो उस वक़्त सजदा कर न सकेंगे। पर हाल क्या होगा, ख़ाशियतन अबसारुहुम, आंखें शर्म के मारे झुकी हुई होंगी, तरहक़ुहुम ज़िल्ला, इन पर ज़िल्लत छा चुकी होगी। ये अल्लाह ताला के नज़ूल का वक्त है, क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला मैदान महशर में आएंगे तो लोग सजदे करने चाहेंगे, लेकिन वो लोग जो दुनिया में नहीं करते थे वो झुके नहीं जा सकेंगे, वो वहीं खड़े होंगे। वक़द कान युदऊन इला सुजूदी वहुम सालिमून, हालांकि इन्हें दुनिया में बुलाया जाता था सजदे की तरफ जबकि वो सही सालम थे, जब कर सकते थे तो किए कोई नहीं सजदे, नमाज़ें पढ़ सकते थे तो पढ़ी कोई नहीं, जहन अच्छा था तो उस वक़्त तो दुनिया भरी हुई थी दिमागों में, आज वहाँ जाके वो लेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं, कोई एक्सेप्ट नहीं होगा, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, वहाँ कोई मेकअप टेस्ट नहीं है। फ़ज़रनी व मैं युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीस, बस है नबी आप छोड़ दें मुझे भी और उसको भी जो इस किताब को झुठलाता है। क्या जहन में आ रहा है, बाप कहता है पीछे हो जाओ ज़रा, मैं इसको निपट लेता हूँ, आप बीच में निकल दें, मैं झुटलाने वालों को खुद पूछता हूँ। ये आपको इतना सताते हैं, अल्लाह कैसे इंतकाम लेता है ऐसे लोगों से। सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यालमून, हम इन्हें बतदरीज तबाही की तरफ ले जाएंगे, इस तरह के इन्हें इल्म भी ना होगा, इन पे दुनिया कुशादा कर दूंगा, इनको दुनिया में इतना कुछ दे दूंगा कि ये सोचेंगे रब खुश है, लेकिन वो अल्लाह का कानून इस्तिदराज होगा, इम्तहान होगा। वो उमली लहुम, अभी तो मैंने इनको मोहलत दी हुई है, लेकिन इन न कई दी मतीन, मेरी खुफिया तदबीर बड़ी पुख्ता है। ये सोचते हैं माल औलाद सेहत जवानी शोहरत सब कुछ मिलना अल्लाह की रजा है, ये रजा नहीं है, ये तदरीज है। बाकी रह गई बात कि ये आपके दुश्मन क्यों है, क्यों आपकी रास्ते का रोड़ा बने हुए। अम तसअलुहुम अजरन, क्या आप इनसे कोई उजरत मांगते हैं इस काम की। और फहम में मगरम में मुस्कलून, और वो इस तावान के बोझ से दबे में, मगरम टैक्स को कहते हैं, कि आप इनसे इस तबलीग के काम पर कोई पैसे मांगते हैं जिसको वो दे नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर पाते और बोझल है। कोई तो ऐसी बात नहीं थी, तो फिर एक और बात होगी, अमिन दहुमुल गैब फहम यक्तुबून, क्या इनके पास गैब की खबरें आती हैं और वो इसको लिख लेते हैं, और उन खबरों में ये बताया जा रहा है कि इस शख्स की बात ना मानना। बिल्कुल आप देखें बातें सारी हो चुकी हैं पीछे, सिर्फ बताया जा रहा है कि तबलीग के रास्ते में किस किस्म के हालात पेश आ सकते हैं, बिला वजह लोग रोड़े अटकाते हैं। करो क्या, फस बिरले हुक्म रब्बिक, बस इंतज़ार फरमाइए अपने रब के हुक्म का, यानी अभी नहीं मक्का छोड़ के जाना, हिजरत नहीं करते जब तक अल्लाह को हुक्म नहीं आता। वला तकुन का साहिबिल हूत, मछली वाले की तरह ना हो जाए, पीछे जन नून आया था हज़रत यूनुस के लिए, यहाँ पर हूत आया, दोनों मछली के लिए आते हैं। क्या था उनके साथ? इस नादा वहुवा मकदूम, जब उसने पुकारा और वो गम अंदोह से भरा हुआ था। क्या पुकारा था? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह ताला के हुक्म से पहले ही बस्ती छोड़ चुके थे, तंग आ गए थे उनकी नाफरमानियों से। अल्लाह को ये बात पसंद ना आई, मछली के पेट में भेज दिए गए और गम के मारे वहाँ ये बोल रहे थे, लौला अंतदारकहु नेमतुम मिन रब्बी। ये बहुत कीमती आयत है, इसको हाईलाइट कर लें, पढ़ने में बहुत मुश्किल लगती है लेकिन मफहूम बड़ा प्यारा है। लौला अंतदारकहु नेमतुम मिन रब्बी, अगर इसकी चारा साजी न करता इसके रब का लुत्फ तो डाल दिया जाता। लनुबिज़ बिल आरा इवहुवा मज़मूम, तो डाल दिया जाता चटियल मैदान में इस हाल में कि उसकी मजम्मत की जाती। मुश्किल तर्जमा, मफहूम इसका क्या है कि अगर उसने अच्छे दिनों में रब को याद ना किया होता तो अल्लाह ताला उसको इस मुश्किल से ना निकालता। यहाँ वो रिवायतें आती हैं कि जो अच्छे दिनों में अल्लाह को याद रखता है ना, बीमारी दुख तकलीफ़ों में भी अल्लाह सुबहाना ताला उसको जल्दी फ़ायदा देता है। हज़रत यूनुस की आवाज़ जब फरिश्तों ने सुनी थी अर्श पे, तो कहा ये आवाज़ तो पहचानी पहचानी है। पता चला ये वही यूनुस है जो अच्छे दिनों में भी अल्लाह ताला को याद करता था। हदीस में आता है कि जो ये चाहता है कि दुख बीमारी तकलीफ़ परेशानी में अल्लाह मेरी ज़्यादा सुने, तो वो खुशी रहमत के दिनों में अल्लाह को ज़्यादा याद करे। हमारा हाल क्या, खुशी के दिनों में क्या करते हैं? गम की बातें तो छोड़ दीजिए। फजतबाहु रब्बुहु, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, कहा लाख बार नहीं शायद चंद बार, लेकिन नदामत के एहसास से अल्लाह ने फिर चुन लिया। फजअलहु मिनस्सालिहीन, फिर उनको अपने नेक बंदों में शामिल कर लिया। इशारा था कि अगर एक दफ़ा कोई मुश्किल आ जाए कोई बात नहीं, वो फिर ठीक हो जाती है। और आखिरी आयत में मक्का वालों के दिलों में नबी सल्लम के लिए जो बुग़्ज़ और इनाद था ना, उसका इजहार, आपको घूरते थे क्या? वहीं यकादुल्लसीन कफरू लयुज़लिकून कबी अबसारिहिम लम्मा समिउज़्ज़िक्रा व यकूलून इन्नहु लमजनून। और यूँ मालूम होता है कि कुफार फिसला देंगे आपको अपनी बद नज़रों से जबकि वो सुनते हैं कुरान और वो कहते हैं ये तो मजनू है। क्या वाकई ये मजनू है? नहीं। वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, हालांकि वो नहीं मगर सारे जहान वालों के लिए एक नसीहत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके घूरते थे, जैसे आंखों से कहते ना कच्चा चबा जाना, बुग़्ज़ भरी नज़रों से। यहाँ से नज़र बद का इशारा मिलता है, पीछे भी सूरत यूसुफ में हमने बात की थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, अल आइन हक़ुन, नज़र बद हक है, लग जाती है। उस पर हमने काफ़ी डिटेल से बात की थी। खुलासा यह कि नज़र बद लगती है, पहले से प्रिकॉशंस लें, सुबह शाम की दुआएं, आउज़ु बिकलिमातिल्लाहित्तामाति मिन शर्री मा खलक 3 दफ़ा, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिहि शैउन फिल अर्दी वला फिस्समाइ वहुवस समीउल अलीम 3 बार, आयतुल कुर्सी का पढ़ना, आखिरी कुल 3 पढ़ना। इसी तरह इंसान जब भी कोई चीज़ देखे तो उसके लिए माशाल्लाह कहे तो अल्लाह ताला के हुक्म से बद नज़री से बचता है। नज़रों में असर होता है। हदीस में आता है कि नज़र बद ऊँट को हांडी तक पहुंचा देती है और इंसान को बिस्तर पे लिटा देती है। तो बहुत दफ़ा नज़र भी लग जाती है इंसान को। आप कहते हैं मैं तो बहुत काम करती हूँ दीन का, फिर अगले ही दिन कमर दुखती है, कभी सर में दर्द है, कुछ है। कभी आप बहुत नेकी का काम कर रहे हो ना और एकदम रोक लिए जाए एक मुश्किल दूसरी, तो फौरन देखें कि कहीं ना कोई नज़र बद का असर है, आंखों से रेस निकलती हैं। तो इसके लिए फिर इंसान अपनी नेमतों को छुपाए, बहुत नहीं बतानी चाहिए अपनी बातें। आप जिस चीज़ को बहुत एक्सपोज कर देंगे ना वो नज़रों में लग जाएगी। बाकी रहेगी बात कि इसके लिए और क्या किया जाए। एक तो आपको बताया था कि जिसकी नज़र लगी अगर यकीन है उससे वज़ू कराया जाए और उसके बचे हुए पानी से गुसल किया जाए तो नज़र हट जाती है। एक मौके पे ऐसा हुआ नबी सल्लम से, यहाँ इसका मौका नहीं है। बच्चों के लिए भी नबी सल्लम دم کیا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت، یہاں موضوع پہ رہی ہے، تبلیغ کرتے ہوئے بھی نظر لگ جاتی ہے۔ اللہ کے راستے میں بلانے والا اللہ کی کتاب کی وجہ سے خود بخود قابل کشش ہو جاتا ہے۔ ایسے وقتوں میں اگر کوئی حسد سے بھی دیکھتا ہے نا، تو اس کو بھی بد نظری کا شبہ ہو جاتا ہے۔ تو جتنا دعاؤں کا اور پاک رہنا، رزق حلال، عقیدے کا درست رکھنا ہوگا، اتنا انشاءاللہ ان چیزوں سے بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کے فتنوں سے بچائیں۔ پوری سورۃ قلم کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی کو دین کے راستے میں جو تکلیفیں آئیں، لوگوں نے مجنوں کہا، دیوانہ کہا، آپ کو بھی کہیں تو خوش ہوں۔ فنیٹک کوئی کہہ دے مبارک ہو آپ کو، ایکسٹریمسٹ کہہ دے کوئی مبارک ہو، فنڈامنٹلسٹک کہہ دے مبارک ہو، کوئی جھلی کہہ دے، کوئی جو بھی کہہ دے، بس دعا کریں کہ آپ کام صحیح کر کے رہیں، پھر اس طرح بات بنے گی۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دل کی بات جو ہوتی ہے وہ نظروں میں آ جاتی ہے، ہماری لکس بتاتی ہیں کہ ہم کسی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين، فلما قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين.